नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक ढांचा तैयार करने के महत्व को दोहराया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। निर्वाचन आयोग आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद में आज शुरू होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ISSF विश्व कप निशानेबाजी के फाइनल में भारत की सोनम मस्कर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और PV सिंधु लक्ष्य सेन आज डेनमार्क ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक इस्तेमाल का आह्वान करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि सुरक्षा, सम्मान और समानता सभी चर्चाओं के केंद्र में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक ढांचा की स्थापना के महत्व को भी दोहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान इस विषय को उठाया था और वैश्विक संस्थानों से वैश्विक शासन में इसके महत्व को पहचानने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 का उद्घाटन करते हुए कहा कि WTSA का उद्देश्य वैश्विक मानकों की दिशा में कार्य करना है और मोबाइल कांग्रेस की सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दूरसंचार और उससे संबंधित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभी दुनिया का सबसे अधिक गतिशील देश है।
आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है। भारत जहां 120 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स हैं, जहां 95 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, जहां दुनिया का 40% से अधिक का रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है, भारत जिसने डिजिटल कनेक्टिविटी को लास्ट माइल डिलीवरी का इफेक्टिव टूल बनाकर दिखाया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का डिजिटल विजन 4 स्तंभों, सस्ते उपकरण, सभी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, किफायती डाटा और डिजिटल प्राथमिकता पर कार्य करता है।
साथियों, WTSA पूरी दुनिया को कंसेंसस के जरिए एम्पावर करने की बात करता है। इंडिया पूरी दुनिया को कनेक्टिविटी के जरिए सशक्त करने की बात करती है। यानी इस इवेंट में कंसेंसस और कनेक्टिविटी भी एक साथ जुड़ी है। आप जानते हैं कि आज की कॉन्फ्लिक्ट के लिए इन दोनों का होना इतना जरूरी है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपनी सफलता के अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत 5G का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और अब सरकार 6G प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं का नेतृत्व बढ़ाने के लिए अनेक अवसर पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नमो ड्रोन दीदी पहल ने ड्रोन के इस्तेमाल से कृषि के क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात किया है। श्री मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन किया। मोबाइल कांग्रेस में इनोवेशन इकोसिस्टम का प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस अवसर पर कहा कि भारत 6G प्रौद्योगिकी के विकास में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों में सरकार ने $10 अरब का निवेश किया है और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 7 लाख किलोमीटर फाइबर नेटवर्क तैयार किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 3 देशों की यात्रा के 3रे दिन आज अल्जीरिया में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगी। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति का कुछ ही देर में सिद्दी अब्दुल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी को संबोधित करने का कार्यक्रम है। वे बाद में समुद्री जल विलवणीकरण परियोजना स्थल और रोमन रूइंस का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति विलायत ऑफ टिपासा के लिए रवाना होंगी और मकबरे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति का बाद में हमा गार्डन जाने और वहाँ एक पौधा लगाने का कार्यक्रम है। से आकाशवाणी समाचार के लिए मयूषा।
यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मॉरिटानिया के लिए रवाना होंगी। अंतिम चरण में राष्ट्रपति 17 से 19 अक्टूबर तक मलावी का दौरा करेंगी। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन आज से इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिन की इस्लामाबाद यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्री ने कहा है कि उनकी पाकिस्तान यात्रा एक बहुपक्षीय कार्यक्रम के लिए है और उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता से इंकार किया। एक रिपोर्ट।
ये पिछले 9 वर्षों में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पाकिस्तान की पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। शंघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें 9 सदस्य देश भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। SCO सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करने, राजनीतिक, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति में उनके प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षता सिंह।
चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 सचिव स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमा ने और विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने किया। ऑस्ट्रेलियाई पक्ष का नेतृत्व रक्षा विभाग के सचिव ग्रेग मोरियार्टी और विदेश मामले और व्यापार विभाग के सचिव जॉन एडम्स ने किया। मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान राजनीतिक, रणनीतिक, रक्षा और सुरक्षा तथा आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। आयोग नई दिल्ली में दोपहर बाद 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल अगले महीने की 26 तारीख को समाप्त हो रहा है, जबकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 5 जनवरी को समाप्त होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए आज शाम नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राज्य भाजपा प्रभारी बाबूलाल मरांडी भी हिस्सा लेंगे। झारखंड चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि इस बैठक में NDA के सीट बंटवारे के फार्मूले पर भी चर्चा होगी।
आसू का साथ लगभग एक ही सीट में बंद चल रहा है, 10 से 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन उनको अच्छे सीटें मिलेगा। JDU का साथ लगभग 2 सीट में हमारा बातचीत हुआ है, अगर पार्टी हाईकमान और कुछ करे तो अलग बात है, और सिराग पासवान जी से भी बातचीत चल रहा है। पहला सुर्सी भी हम लोग तुरंत ही दे दूंगा, हम लोग तैयार बैठा।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में हेरफेर के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें 100% फुल प्रूफ हैं। श्री कुमार ने आज नई दिल्ली में कहा कि चुनाव के दौरान मतदान में भाग लेकर लोगों ने EVM को लेकर उठाए गए सवालों का समाधान कर दिया है।
वोटिंग में परसेंटेज और वोटिंग में पार्टिसिपेट करके पब्लिक जवाब देती है सवाल का। जहां तक EVM और इन सबका प्रश्न है वो 100% फुल प्रूफ है, मैं कई बार बता चुका हूं। आज अगर ये प्रश्न उठेगा तो फिर बताएंगे।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को आमंत्रित किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उपराज्यपाल को सौंपे एक पत्र में कहा था कि श्री अब्दुल्ला को विधानमंडल पार्टी का नेता चुन लिया गया है। इसके बाद उपराज्यपाल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया। शपथ ग्रहण समारोह कल श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। इधर हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को पंचकुला में होगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। पंजाब में ग्राम पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। अधिकांश जिलों में मतदान शांतिपूर्वक हो रहा है। पंजाब के विभिन्न जिलों से आ रही खबरों के अनुसार ज्यादातर इलाकों में अब तक औसतन 35% से अधिक मतदान हो चुका है। परमेश शिवमणि ने 26वें भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका दृष्टिकोण तटरक्षक बल के लिए प्रगति के तीन स्तंभों ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर आधारित है।
आई इंटेंड टू फॉलो एन इंक्लूसिव अप्रोच फॉर द ओवरऑल ग्रोथ एंड प्रोग्रेशन ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। द थ्री की पिलर्स विद विच आई इंटेंड टू प्रोग्रेस द कोस्ट गार्ड ऑन ऑल फ्रंट्स आर प्रोबिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी which was enunciated by Honorable Prime Minister from the ramparts of the Red Fort during the speech last year.
राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। समाचार कक्ष की श्रद्धांजलि।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलअब्दीन अब्दुल कलाम था। वे भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। अब्दुल कलाम ने 1998 में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका भी निभाई। इसके साथ ही उन्हें भारत सहित दुनिया भर के देशों ने कई पुरस्कारों से सम्मानित किया। भारत सरकार ने उन्हें 1997 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। कलाम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। अब्दुल कलाम विश्व में अपने व्याख्यान के लिए प्रसिद्ध थे और विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। उनके 79वें जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अब्दुल कलाम ने विद्यार्थियों को सफलता का मंत्र भी दिया था।
सक्सीडिंग लाइफ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू यू हैव टू डू फोर थिंग्स ओके। Number one, I will have great aim. I will continuously acquire knowledge. How I will do hard work. I will persevere and succeed. Okay, that's the mantra.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति की सोच और दूरदृष्टि से देश को विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज महाराष्ट्र के देवलाली और दानापुर के बीच नई विशेष ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। शेतकारी समृद्धि स्पेशल ट्रेन से देवलाली और दानापुर के किसानों तथा उपभोक्ताओं के बीच संपर्क बढ़ेगा। लद्दाख में करगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए सेना ने काक्सर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है। ये पहल करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के तहत आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के एक हिस्से के रूप में की गई है। कैप्टन भारद्वाज ने 1999 के करगिल युद्ध में मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारतीय निशानेबाज सोनम उत्तम मस्कर ने दिल्ली में खेले जा रहे ISSF विश्व कप 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। 22 वर्षीय मस्कर ने 252.9 अंकों के साथ फाइनल मुकाबले में दूसरा स्थान हासिल किया। चीन की यूटिंग वंग ने स्वर्ण जबकि फ्रांस की निशानेबाज ओसीएने मुल्लर ने कांस्य पदक जीता। डेनमार्क ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता भारत की पीवी सिंधु आज शाम महिला एकल के शुरुआती दौर में चीन के ताइपे की पाई यू पो के खिलाफ अपना मुकाबला खेलेंगी। लक्ष्य सेन और चीन के लू गुआंग जू के खिलाफ इस समय मुकाबला जारी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक ढांचा तैयार करने के महत्व को दोहराया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। निर्वाचन आयोग आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद में आज शुरू होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ISSF विश्व कप निशानेबाजी के फाइनल में भारत की सोनम मस्कर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन में 2024 टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगी और लक्ष्य सेन का मुकाबला चीन के लू ग्वांगजू से जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।